Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Payaku Karma Kipai Kevala Jnana Upaya Prabho Bae Bhajo Shivarai Jinavani Ke Jnana Te Hota Tattva Shraddha Charana Dhari Kevala Lahe Pave Pad Nirvana. लब्धिसार ग्रंथ के आधार से हम यहाँ पंच लब्धि का प्रकरण देख रहे हैं। 11 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। सुबह थोड़ी प्राथमिक बातें आई थी।
गुजराती हम, 10 नंबर
गुजराती में 10 नंबर कर्म के जो साधारण बंध आदि अवस्थाएं, थोड़ी उसकी बात शाम को भी करेंगे। अभी हम यहाँ इस पुस्तक के आधार से आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रकृति यानी स्वभाव, हमने देखा कारमान वर्गना से कर्म बनता, ये तो सामान्य कथन हुआ। परंतु अलग अलग जो टाइप के कर्म होते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। उसमें जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय आदि जो प्रकृतियां है उसको कहते हैं मूल प्रकृति। मूल क्यों कहा? क्योंकि उसके भी हरेक के सब डिविजन्स जो होते हैं, पेटा भेद, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो ये मूल प्रकृतियों के नाम 8 है। उसके दो में विभाजन किए हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। तो घाती कर्म 4 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अघाती कर्म भी 4 है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये तो बेसिक बिल्कुल आसान है। तो ये स्वभाव के अनुसार है इसके नाम। ज्ञान आवरण, तो ज्ञानावरण ऐसा शब्द तैयार हुआ। तो ज्ञान पर आवरण लगाता है, क्या करता है? इतनी पुद्गल में शक्ति है कि जीव का ज्ञान रोक दे, तो ऐसे नहीं। जीव स्वयं हीन ज्ञान रूप परिणमन करता है अपने स्वयं की योग्यता से, तब वहां सामने कर्मों का उदय पाया जाता है, उसको कहेंगे ज्ञानावरण कर्म। तो उसको शास्त्र में भी उसका उदाहरण देके समझा है कि जैसे कोई मूर्ति है और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया तो वो नहीं दिख रही है। इस तरह से यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण को, यहाँ आवरण वाला कर्म जो है, तो ये आवरण शब्द जो है ना, आवरण का एक उसकी उसी मीनिंग का एक शब्द है छद्म। सुना है कभी? क्या सुना है? छद्मस्थ सुना है शब्द? हाँ, तो छद्मस्थ किसे कहना?
नाश करता है और ढक देता है।
ढक देता है ना, जो ढका हुआ है,
ढका हुआ है।
स्थ यानी गृहस्थ किसको कहना? जो ग्रह में रहता है, घर में रहने वाले वो गृहस्थ, और बाकी वो मुनि जो घर में नहीं रहते, जंगल में रहते हैं। तो जैसे गृहस्थ है ने घर में रहने वाले, वैसे छद्मस्थ है ने आवरण सहित आवरण में रहने वाले। तो कब तक आवरण है? तो जब केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आवरण वाले जीव है। क्योंकि केवल ज्ञानी जो है, सर्वज्ञ है, उनको ज्ञान का आवरण पूर्णपणे नष्ट हुआ है, दर्शनावरण वो पूर्ण नष्ट हुआ है, तो इसलिए उनको तो सर्वज्ञ कहेंगे। और जो आवरण सहित है, गुणस्थान की भाषा में बोलना है तो 12वें गुणस्थान तक, उन जीवों को कहेंगे छद्मस्थ। हम सब छद्मस्थ है यानी अल्पज्ञ है, और वो सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ। बेन ख्याल में आता है? तो ये छद्म आवरण जो है, तो कौन कौन से कर्मों में ये आवरण शब्द लगता है? तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो में लगता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो वहां अंदर ज्ञान खुला है और ऊपर से कोई किसी ने ढक दिया, ऐसा नहीं है। यानी वो ज्ञान पर्याय में जो है, अपनी जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें केवल ज्ञान है ही नहीं अभी, तब उसका वो आवरण केवल ज्ञान आवरण पाया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान तो पर्याय में प्रकट हुआ है और फिर ऊपर से ढक दिया हो, ऐसा नहीं है, ये बात यहां कहना चाहते हैं। वही ख्याल में आता है।
हाँ।
अभी हम कैसे हैं? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं, यानी आवरण वहां है, परंतु आवरण है इसलिए हमारा ज्ञान ढक गया, ऐसे नहीं। हम अपने योग्यता से हीन ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, तब सामने जो आवरण पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे मति ज्ञान आवरण है, श्रुत ज्ञान आवरण। उसमें वो किसी को कम है किसी को ज्यादा है ऐसा क्यों, उसकी बात आगे आएगी। एक क्षयोपशम क्या होता है उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो ये हो गया ज्ञान आवरण। तो उसको शास्त्र में उदाहरण देते हैं कि देवता की मूर्ति है और उसके वस्त्र से ढक दिया है, उस तरह से ये ज्ञान आवरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, ये कथन है। अब आगे के पृष्ठ पर दर्शन आवरण की बात की है, शायद आपके उसी पृष्ठ पर जहां दो नंबर का पॉइंट लिखा है। दर्शन आवरण यानी दर्शन गुण, जब दर्शन शब्द आता है तो दो प्रकार से आता है, एक ज्ञान दर्शन वाला दर्शन और एक सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन वाला दर्शन। दोनों जगह दर्शन शब्द तो वही है परंतु तो उसका अर्थ अलग अलग है। जब मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहते हैं और जब उसके पूर्व मिथ्या दर्शन कहते हैं, तो वहां श्रद्धा समझना, सही श्रद्धा सच्ची प्रतीति, उसको कहेंगे सम्यक दर्शन, और जब मिथ्यात्व है तब कहेंगे मिथ्या दर्शन। और जब ज्ञान दर्शन वाला दर्शन ही नहीं, उसका अर्थ क्या है, जानना देखना जिसको हम कहते हैं। ज्ञान के पहले जो सामान्यपन है, जिसको पदार्थों का पहले में पहले जो कोई वहां ग्रहण होता है, ग्रहण होता है ने, अभी जानना नहीं कहेंगे, जानते हैं तो पदार्थ को पहचान लेते हैं, उससे पहले जो कोई सामान्यपन है उसका रिसेप्शन होता है तो उसको हम कहेंगे, तो उसका अवलोकन उसका शब्द है, उसको कहते हैं दर्शन। तो यहां जो दर्शन आवरण कहा है वो जानने देखने के अर्थ में जो दर्शन है, अवलोकन वाला दर्शन, उस पर जो आवरण आता है उसमें जो हीनता होती है उसको कहेंगे यहां दर्शन आवरण कर्म। ये जो नींद आती है ना, थोड़ी नींद या गहरी नींद, वो भी दर्शन आवरण के उदय में होती है। आपने शायद सुना होगा निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यांग वृद्धि। स्त्यांग वृद्धि यानी सबसे ज्यादा डीप स्लीप, कि नींद में उठकर चलकर कोई कार्य भी करके आए, चलकर भी आए, बढ़ाते हैं, घर के बाहर भी जाके आते हैं, तो उसको कहते वो स्त्यांग वृद्धि वाला। ऐसे जो डेप्थ अलग अलग है नींद की, वो सभी क्या है, दर्शन आवरण के उदय में होने वाला कार्य है, यानी वो जागृत अवस्था को रोकने वाला है, उसका प्रतिपक्षी जागृत अवस्था। ये दर्शन आवरण की बात हुई। उसके लिए भी उदाहरण आता है कि जैसे राजा के दरवाजे पर वो द्वारपाल खड़ा होता है और दर्शन नहीं करने देता, ऐसे यहां समझाने का तरीका है वो। अब मोहनीय कर्म भी सुना होगा आपने, जिसके दो भेद करते हैं हम, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो मोहनीय ने वो तो मोहित कर देता है जीव को, वो सच्ची श्रद्धा नहीं रहने देता, ये तो श्रद्धा में जो विपरीतता है वो भी मोहनीय का कार्य है। और चारित्र में विपरीतता का अर्थ होता है, देखो जीव का स्वभाव कैसा है, एक तो सर्वज्ञ स्वभाव है, क्योंकि जो स्वभाव है वही पर्याय में प्रकट होता है। तो भगवान कैसे है, अभी सुबह हमने देखा था उनके दो लक्षण बताए थे, वीतरागी और सर्वज्ञ। ये वीतरागता भी स्वभाव में से ही प्रकट हुई है, जैसे सर्वज्ञ अपना स्वभाव है वैसे वीतराग यानी अराग भी अपना स्वभाव है। ये क्रोध मान माया लोभ तो विभाव है, उससे रहित ऐसी जो अवस्था में हो जाना वो अवस्था वाली वीतरागता है। तो स्वभाव कैसा है, राग रहित स्वभाव है, तो राग रहित अपना स्वभाव है। जीव द्रव्य का स्वभाव तो राग रहित है और राग द्वेष होना ये उसका विभाव है। जैसे हमने आपको पूछा पानी का स्वभाव कैसा है,
शीतल
है, हम तो उबालते हैं ना चाय पीने के लिए, उबला हुआ दिखाई देता है हमको, तो उसका विभाव है। तो पानी का स्वभाव तो वो उबला हुआ पानी भी हम चूल्हे पर डाल देते तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी ना, तो शीतलता उसका स्वभाव है, ये बात ख्याल में आती। ऐसे ही जीव का स्वभाव है राग द्वेष रहित ऐसी अवस्था। तो चारित्र गुण का विभाव परिणमन जो होता है उसमें राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि होते हैं, हास्य रति अरति ये जो नौ नौ कषाय भी कहे ना, वो भी वो विभाव परिणमन है। यानी हंसना भी क्या है, विभाव है। और हम कहते ना, हम यात्रा में गए थे, कैसी मूर्ति कैसी थी, बहुत हसमुख थी। यानी भी भगवान के एक कषाय बाकी रहा ऐसा हम सोचते हैं। गुजराती में हसमुख शब्द बहुत, यह कोई नहीं है ना। तो वहां उदाहरण दिया है, जैसे मद्य पीकर पीकर कोई बेहोश होता है उसको ख्याल नहीं रहता है, माँ को कभी बहन भी कहेगा और अपनी स्त्री को माँ कहेगा कुछ भी, वैसे ही यह जीव यह मिथ्यात्व के कारण अपना स्वरूप जो है, ज्ञान दर्शन वाला अपना स्वरूप है, तो अपने को भूलकर वो शरीर को ही मैं मानता है। उसको ये मद्यपी की उदाहरण उसका दिया है, दृष्टांत दिया है। तो उसके दो भेद अभी अभी हमने गिनाए थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन यानी वो श्रद्धा वाला दर्शन, यानी दर्शन में विपरीतता होती है, श्रद्धा में विपरीतता होती है। मैं कौन हूं इसके बारे में वो झूठी कल्पना करता है, उसको कहेंगे वो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है। बेन ख्याल में आता है नहीं, क्या आता है?
आता है
हाँ, थोड़ा आता है तो पूछना बीच में। अरुणा बेन, आपने ये नाम तो सुने होगी ना, मोहनीय कर्म का नाम सुना है कि नहीं सुना? और चारित्र मोहनीय में क्या होता है, उसका उदय चलता है कर्म का। और यहाँ जीव में क्या होता है, क्रोध मान माया लोभ, ये तो चार तो हो गए मेन कषाय। और जो नौ कषाय करते क्या, किंचित कषाय, उसमें हास्य रति यानी किसी के प्रति प्रेम होना, अरति शोक भय जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी किसी के प्रति घृणा होना,
चित्री चढ़े,
चित्री चित्री क्या कहते हैं,
चित्री
चित्री
हाँ,
और स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये सारे ही चारित्र मुनि के उदय में होने वाले परिणाम है। भाई कोई प्रश्न है नहीं है? अच्छा, अब अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है, अंतराय ने बाधा विघ्न, जैसे जीव के गुण है लाभ है, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, उसको हम भाई अपनी भाषा में लौकिक में समझेंगे। तो दान देना चाहता है कोई राजा, और वो खजींदार कहता है नहीं, अपने अभी खजाने में कब धन का भंडारी, उसका कहता है ये अभी मत देना, रोकता है। ऐसे दान में जो बाधा लावे वो दानांतराय कर्म, हमें लाभ होना है किसी चीज का, वो नहीं मिले, जैसे हमारे अभी बैंक में से वो डिपॉजिट का हमारी मैच्योरिटी हुई है, क्या करें अभी हड़ताल चल रहा है बैंक का। तो हमें लाभ मिलना है वो नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे उसको, लाभांतराय, लाभ में अंतराय, लाभ में विघ्न। तो उसको निमित्त हम किसको कहते हैं, अभी अरे वो बैंक वालों ने हड़ताल किया, परंतु हमें सच्चा निमित्त, निमित्त भी बहुत होते हैं, ये तो बाहरी एजेंट हो गए, कौन से अभी वो हड़ताल हुई और आपको नहीं मिला पैसा, तो हम कहेंगे वो लाभांतराय कर्म का वो बाहर का एजेंट है। तो ये मूल निमित्त कौन है उसका, तो लाभांतराय का। ऐसे ही दान लाभ भोग, भोग में जो बाधा हो उसको भोगांतराय कहेंगे, उपभोग में जो बाधा है वो उपभोगांतराय। ये भोग और उपभोग में क्या अंतर है पता है आपको?
जो बार बार भोग है,
हाँ लता बेन आपको पता है? हाँ
भोग है जो बार बार
भोग तो एक बार होता है और उपभोग बार बार होता है, नहीं समझे आप? अभी हम जिस थाली में खाना खाया डिस्पोजेबल में, तो क्या किया, एक बार यूज किया तो भोग हुआ, और प्लेट में जो कोई भी हो धातु की हो या आपकी कोई क्रॉकरी हो, तो हम बार बार उसको यूज करते हैं तो वो क्या हुआ, उपभोग हुआ। एक बार भोगना उसको भोग कहेंगे, जो रोटी तो एक ही बार खा सकते, उसी रोटी को दोबारा नहीं खाएंगे, दूसरे दिन दूसरी रोटी खाएंगे, तो वो भोग हुआ। और जो कपड़े हैं, गहने हैं, अन्य वस्तुएं हम बार बार उसका उपयोग करते हैं, घर है, तो इसको हम उपभोग लेते हैं, ये उपभोग हुआ। इसमें जो बाधा लावे उसको कहेंगे भोगांतराय, उपभोगांतराय। और वीर्यांतराय, वीर्य ने जीव की जो पर्याय जो है प्रकट करना उसको कहेंगे वीर्य, स्वभाव पर्याय प्रकट करना वो वीर्य कहेंगे उसको। तो जीव अपनी स्वयं की पर्याय प्रकट करे ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति जीव में है, परंतु वो प्रकट नहीं होती है तो उसको हम कहेंगे वीर्यांतराय। देखो जीव का अपना कार्य वो स्वयं करता है, वीर्य गुण की जो पर्याय है उसका नाम आपको मालूम है रमेश भाई?
पुरुषार्थ।
तो हम तो कहते सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं तो वो पुरुषार्थ कहाँ करना चाहते हम, धन कमाने में, जो अपनी पर्याय नहीं है, समाज सुधारना करने में, जो अपनी पर्याय ही नहीं है, यानी उसको हमने पुरुषार्थ माना। पुरुषार्थ तो वीर्य गुण की पर्याय है। गुण किसे कहते हैं मनीष भाई को याद, सुबह याद आए थे? हाँ, गुण किसको कहना, गुण की परिभाषा
जो जीव के साथ।
हाँ, बहुत अच्छा। अभी क्योंकि हम यहाँ भी जीव की बात करें ना, जो द्रव्य के
पूरे
संपूर्ण भागों में
और
उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसको हम गुण कहते हैं। तो वीर्य गुण को हमने पूछा, जीव के वीर्य गुण को पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो वीर्य गुण ने कहा मैं जीव के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता हूं। तो उसकी पर्याय भी कहाँ रहेगी, संपूर्ण भागों में रहेगी, उसकी अपनी अवस्था में रहेगी, जो जिस समय का जो पुरुषार्थ चल रहा हो। तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो हम कहते हैं वो वीर्य गुण की पर्याय है। तो वो जीव में रहेगी कि शरीर में रहेगी, जीव की पर्याय तो जीव में रहेगी। जैसे हमने सुबह देखा था स्पर्श गुण की पर्याय हल्का भारी, वो पुद्गल की पर्याय है, शरीर की पर्याय है, वो शरीर में रहेगी। फिर भी हम मानते वो बात छोड़ दो कि मुझे बुखार आया, कहना कोई बात ठीक है, नहीं तो डॉक्टर के पास ऐसे नहीं जाके बताना कि मेरे पड़ोसी को बुखार आया तो डॉक्टर कहेंगे आपके पड़ोसी को लेके आना, तो फिर वो कुछ अन्य ही सोचेगा क्योंकि अभ्यास नहीं ना उस डॉक्टर का। तो यहाँ तो हम ये समझना चाहते हैं कि वीर्य गुण की जो पर्याय जीव के जो पुरुषार्थ है वो जीव का अपने में चलेगा। और हम पुरुषार्थ किस में मानते हैं, या तो दूसरों को मदद करने में, धन कमाने ही में, क्योंकि वहां कहते हैं कौन कौन से चार पुरुषार्थ बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें अर्थ है पैसा कमाना, धर्म है पुण्य करना, इसमें पुरुषार्थ मानते हैं, काम में पुरुषार्थ मानते हैं और मोक्ष में पुरुषार्थ मानते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ। तो इसमें सच्चा पुरुषार्थ कौन सा समझना, ये बाह्य तो लौकिक की भाषा जो है उसको भूल जाना हमें, तो सच्चा पुरुषार्थ क्या है? तो जीव अपने स्वभाव रूप पर्याय प्रकट करे वही उसका पुरुषार्थ। अब इसमें जो बाधा लावे उसको हम क्या कहेंगे, वीर्यांतराय कर्म। जीव स्वयं अपनी योग्यता से हीन पुरुषार्थ रूप परिणमित होता है तब हम कहेंगे यहां वीर्यांतराय का उदय चल रहा है। यह हमें तो शास्त्रीय भाषा क्या है उसको सीखना है। तो ये पांच प्रकार के जो कर्म है ये अंतराय कर्म है, उसके पांच भेद है। वेदनीय कर्म में क्या होता है, हम कहते ना अभी हमारा साता का उदय चल रहा है, ये हमें अनुकूलता सब अच्छी है, घर, गाड़ी, धन है, बच्चे हैं, अच्छे कमाते हैं, ये हमारा अभी साता का उदय चल रहा है, हमने तो सुना है ना ऐसा। तो ये साता क्या होता है, तो साता वेदनीय कर्म का नाम है। तो उसके उदय में जीव को संयोगों में अनुकूलता भासित होती है। तो क्या ये सब पैसे वाले साता का ही उदय वाले है क्या? तो हमने तो सुना है साता साता का उदय तो सब चलता रहता है। तो इतना सारा होते हुए मान लेते पेट में बहुत सारा दर्द उठ गया, पीड़ा होने लगी, तकलीफ होने लगी, तो हम क्या कहेंगे, ये असाता का उदय चल रहा है। यानी अभी पैसे वगैरह पड़े हैं ना, तो साता का असाता कैसे हो गया? तो संयोग साता नहीं होता और ना ही संयोग असाता होता है। विशिष्ट संयोगों हमारा भी उपयोग कहाँ चल रहा है? उनकी अनुकूलता तरफ, यानी हमें उसमें अनुकूलता भाषित होती है तो वो साता का उदय कहलाए। अभी पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, तो जो गर्मी, जिसको गर्मी फील होती है उसके लिए वो अच्छा लगता है, तो उसके साता का उदय। और उसी समय जिसको सर्दी हुई है उसको वो तो नहीं अच्छा लगता है, तो उसका उसका असाता का उदय। यानी कोई विशिष्ट संयोग ना साता होता है ना असाता होता है। जीव को उसमें कैसी बुद्धि होती है वो साता असाता का कार्य है, और जब मोहनीय हो तो ही वो साता असाता काम करता है। जिसके मोह नहीं है, राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है और शरीर को अपना नहीं मान रहे, ऐसे जो मुनिराज है उनमें बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता, उनको अनुकूल प्रतिकूल भाषित ही नहीं होता है। यह अनुकूलता या प्रतिकूलता हमें अपनी कल्पना में भाषित होता है, और ऐसी कल्पना क्यों होती है? तो मोहनीय की, मोहनीय के उदय में होती है। तो इस तरह से ये दो प्रकार के है वेदनीय, साता वेदनीय असाता वेदनीय। संयोगों में हर्ष होना, उसमें सुख भाषित होना, ये साता वेदनीय का कार्य है। और संयोगों में दुख रूप प्रतीति होना वो असाता वेदनीय, प्रोवाइडेड मोहनीय हो। तो मोहनीय नहीं है, अब मुनिराजों का मोह नष्ट हो गया है, चारित्र मोह थोड़ा है, भगवान तो वो तो बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके भी कोई संयोग तो है कि नहीं है? तीर्थंकर समोचरण में विराजमान है तो उनको तो कहेंगे, वो तो संयोगों से सुख हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बोलो, मोहनीय है ही नहीं है, और उनको तो अतीन्द्रिय आनंद अनंत सुख प्रकट है, सच्चा सुख। ये जो हम संयोगों से सुख या दुख मानते हैं वो तो सच्चा सुख है ही नहीं है, वो तो बाह्य अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है। तो ये वेदनीय का कार्य, वेदनीय कर्म के उदय में। आयु का कार्य क्या है? तो चार प्रकार की आयु है, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंचायु और नारकायु। तो उस विशिष्ट पर्याय में, पर्याय ने वो भव, मनुष्य भव में रहने का जो काल है, ड्यूरेशन है, उसको कहेंगे आयु। मनुष्य भव में रहने का जो काल वो कब निश्चित होता है? अभी हम सभी मनुष्य हैं और हमारा मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। उदय का अर्थ क्या है? कर्म परमाणु हम बांध के आए, पोटली बांध के आए पहले भव में। देखो बाकी कर्म तो निरंतर बनते हैं और आयु कर्म कभी कभी बनता है, मान लेते एक बार मानते हैं। और जब हम एक भव से दूसरे भव में जाते हैं, अभी हम मनुष्यायु वाले हैं, मनुष्यायु का उदय चल रहा है, इस भव में हम आगामी भव की आयु बांधेंगे, देवायु बांधी मान लेते हैं। जब यहां मनुष्यायु खत्म होती है, उसके परमाणु फिनिश होते हैं, तो यहां मरण हो जाता है, और देवायु के परमाणु हमने बांधे हैं, उसका उदय शुरू हो जाएगा, तो हम देव की आयु वहां चलेगी। कितने काल तक चलेगी? तो जितनी हमने आयु बांधी है, यानी उसके अभी सुबह हमने चार प्रकार देखे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध। तो आयु की जितनी स्थिति बंधी हो, मान लेते कि चार सागर की आयु बांधी है, तो वो चार सागर वाला देव होगा। 33 सागर की आयु बांधते हैं कोई मुनिराज, तो 33 सागर वाले देव हो जाते हैं। तो देवायु उतनी बांधी है तो उतने लंबे काल तक चलेगी उनकी। तो अभी कहना क्या चाहते हैं कि जितनी वो आयु की स्थिति बांधी है वो पूर्व भव में बंधी जाती है। वो जब शुरू होती है ना आयु का भोगना, यानी उसका उदय शुरू होता है, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। ये मनुष्य भव हम कब, मनुष्य भव शुरू हुआ है, ये मनुष्य आयु हमने कब बांधी थी? पिछले भव में। हो सकता है कोई निगोद से आया, कोई नरक से आया, कोई देव से आया, कोई मनुष्य से आया, कोई अन्य तिर्यंश से आया, तो वहां ये आयु बांध कर आया है। उस आयु में एक समय की भी इंक्रीमेंट अब नहीं होने वाली है, क्योंकि जितने परमाणु है उतने लेके आए हैं, उस परमाणु में तो कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इस जो चालू है आयु उसको कहते भुज्यमान आयु। क्या कहते? भुज्यमान, जो हम भोग रहे हैं उसको कहते भुज्यमान आयु, और जो हम बांधते हैं उसको कहते हैं बध्यमान आयु। हम अभी जो आयु का उदय चल रहा है, हम जिस पर्याय में है, हम मनुष्य है तो हमारे मनुष्यायु का उदय चलता है। उदय करते हैं परमाणु खिर रहे हैं, हम उतने विशिष्ट परमाणु बांध कर आए हैं और उसमें से हर समय कुछ न कुछ उदय यानी खिर रहे हैं, तो एक समय ऐसा होगा कि लास्ट लॉट उसका खिर जाएगा, उसको हम मरण कहेंगे। परंतु ये भी निश्चित है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है?
इन डिस्कशन मैंने सुना कि 1/3 ऑफ लेफ्ट ऑफ दिस आयु, तो वो गति बन जाती है कि आयु बन जाती है?
आपका प्रश्न है, हमने ऐसा सुना है कि जो नेक्स्ट बहु संबंधी जो आयु बनती है तो 1/3 बाकी है इस आयु का, तब बनती है, तो गति बनती है कि आयु बनती है? तो उसका नियम है, गति जो है ना वो नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म के 93 प्रकृति है। शरीर की रचना होने संबंधी जो कोई प्रकृतियां है उसका नाम है नाम कर्म। तो ये गति नाम कर्म तो हर समय बनती है, गर्भ में बालक आया तो भी गति नाम कर्म, गति तो हर समय यानी सुबह से रात तक हम गति यानी रात पूरी रात समझना, गति नाम कर्म तो बनता है। मिथ्यात्व अवस्था में चारों गति में से कोई भी गति बंधेगी। अब स्वाध्याय कर रहे तो देवगति बंधेगी, बाद में कोई जाके झगड़ने लगा बाहर, कोई बहुत लोभ करने लगा तो नरक गति भी बंधेगी। तो मिथ्यात्व अवस्था में तो चारों गति में से कोई ना कोई गति बनती रहती है, तो कौन से गति में जाएगा जी? तो जब आयु बंधेगी, आयु वो 1/3 में बनती है, 2/3 बीत गया और 1/3 बाकी, तो वो 1/3 में उसमें भी आयु का जो बंध के हुआ और भी उसमें से उसके नियम बहुत सारे हैं। हम मान लेते ना एक बार बनती है और वो 1/3 में बनती है, तो ये उस समय नरकायु बन रही है, उस समय नरक गति भी बंधेगी क्योंकि गति तो हर समय बनती है। उस समय के जैसे परिणाम हो गए, 1/3 बाकी है लाइफ और उस समय जैसे परिणाम है उस परिणाम के अनुसार वैसे वैसे आयु बंधेगी, और उसकी आयु कितनी बड़ी है या छोटी है वो भी निश्चित होगा उस समय। तो उस समय गति भी बन रही है और वही उसी गति संबंधी आयु भी बन रही है, दोनों एक साथ बन रहे। अदरवाइज गति बन रही है तो गति में तो चारों में सम्यक दर्शन होने के बाद मनुष्यों को तो देवगति बंधेगी एकमात्र, परंतु आयु तो उसने कोई भी बांध पहले बंधी हुई, तो मिथ्यात्व अवस्था में चारों में आयु में से कोई आयु बंधेगी, सम्यक दर्शन होने पर उस जीव को देव आयु बंधेगी और जो देव है उनको मनुष्यायु बंधेगी, नारकी है उनको मनुष्यायु बंधेगी सम्यक दृष्टि होकर, उसके ऐसे नियम है अलग अलग। तो ये चार प्रकार की आयु हो गई।
अब ऐसे होता है कि जब 1/3 आयु होती है, जब जो गति उस समय पे होती है वही गति नेक्स्ट?
हाँ, क्योंकि अकेले गति के कारण नहीं, वो और उसकी आयु बंधी है ना, तो उस आयु में आयु बंधी है, उसको नरक संबंधी आयु बंधी है और उस समय नरक गति भी बंधी है। देखो सत्ता में तो चारों प्रकार की गतियों के कर्म पड़े हैं हमारे हरेक के सत्ता में। उदय किसका चलता है? तो जो आयु चलती है, जिस आयु का उदय है तो उस गति का भी उदय चलता है, और बाकी जो कर्म है गति नाम कर्म के, अभी हमारे में जो कोई तिर्यंश गति नाम कर्म पड़ा है, नरक गति नाम कर्म है, देव गति नाम कर्म है और उसकी ड्यूरेशन पूरी हुई है, तो वो क्या होता है? वो मनुष्य गति रूप से ट्रांसफॉर्म होकर उदय में आता है, उसको कहते हैं संक्रमण होना। ये तो हर समय ऐसा चलता रहता है। अन्य गति नाम कर्म है, मनुष्य गति रूप से होकर उदय में आते हैं। तो यहाँ अभी हम चार आयु कर्म देखे हमने।
तो फिर वो जो आगे वाले बंध हुए हैं 1/3 के पहले वाले सब गति,
पहले जो गति बंधी है वो पड़ी रहेगी उसी सम उसी प्रकार से, क्योंकि सागरों की बनती है ना,
तो
सत्ता में पड़ी रहती है और जिस आयु का उदय हो उस रूप यानी उस गति रूप से टर्न होकर उदय में आती है, जिसका जिस आयु में जिस गति का जैसा उदय है वैसे उस रूप होकर उदय में आती है। गति नाम कर्म में फेरफार हो सकता है उदय के अनुसार, परंतु आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। नरकायु बांधी है तो नरक में जाएगा ही जीव, परंतु नरकायु बंधने के बाद उसके परिणामों में कोई ये शुभ भाव हो गए, समय दर्शन हो गया, तो हो सकता है कि वो लंबी आयु छोटी हो गई, जैसे श्रेणिक राजा ने पहले श्रेणी के जब उपसर्ग किया था मुनिराज पर तो 33 सागर की नरकायु बांधी थी, बाद में परिणाम सुधर गए तो परिणाम के कारण वो 33 सागर की आयु घटकर 84,000 वर्ष की रह गई, परंतु नरकायु चेंज होकर देवायु या मनुष्य नहीं होगी, वो तो आयु तो उतनी वैसी उसको भोगनी ही पड़ेगी। तो उसमें ये ऐसे बहुत सारे परिवर्तन परिणामों के कारण बंधे हुए कर्मों में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं।
आपने नरक बोले ना तो नरक तो गति के उदय से मिलेगी राइट, नरक गति
नरक
गति आयु तो ड्यूरेशन हुआ।
हाँ ड्यूरेशन, पर कौन से संबंधी, कौन से आयु की ड्यूरेशन,
मतलब कि जब
अकेले ड्यूरेशन नहीं होती है। हाँ
जब आयु का बंध पड़ा,
हाँ
वन थर्ड पार्ट किसी भी वन थर्ड पार्ट तब जो भी नाम गति कर्म का उदय होगा चारों में से वही गति।
नहीं नहीं देखिए आपका प्रश्न ऐसा है कि गति के उदय से उस विशिष्ट गति में जाता है जी, परंतु कौन से गति संबंधी आयु, जब आयु बनती है तो अकेले ड्यूरेशन नहीं होती है, कौन से आयु संबंधी ड्यूरेशन। हमने तो आयु के चार भेद किए, मनुष्य आयु, हाँ यानी मनुष्य गति तो बनी रही है, साथ में मनुष्य आयु भी बनती है, तो मनुष्य आयु के कितने साल वो जिएगा वो निश्चित हुआ पूर्व भव में, अब इस भव में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समय मात्र भी आयु में बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि परमाणु तो उतने ही है और उसमें अभी ड्यूरेशन बढ़ने वाली नहीं है।
तो आपने वो एग्जांपल दिया,
हाँ
कि जिसमें तिर्यक गति में कितना साल तो वो कम की मिस आयु कम की
वो पूर्व, हाँ जो वो
कब होता है।
हाँ आपने कहा ये जो आयु में अभी हमने श्रेणिक राजा की बात की थी या अन्य कोई है आयु कम हो जाती है तो वो कब हुई, जब वो श्रेणिक राजा की पर्याय में था तभी उसने आयु बांधी नरक की, बाद में उस जीव को समय दर्शन हुआ, शायिक समय दृष्टि भी हुआ, तीर्थंकर नाम कर्म भी बांध रहा है, तो ऐसे परिणामों के कारण उसकी जो आयु उस पर्याय में ही घटी, बंधी हुई आयु में घटौती हो सकती, परंतु जो आयु हम भोग रहे हैं उसमें घटौती नहीं होती इस परिणाम के अनुसार,
प्रेजेंट,
हाँ प्रेजेंट उसमें बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो पूर्व भव में हो सकती क्योंकि एक ही बार आयु नहीं बनती है, जैसे वन थर्ड में बंदी है तो और वन थर्ड का वन थर्ड बाकी रह गया तो फिर और एक चांस आता है, तो दो बार मिलकर भी आयु के परमाणु लिए जा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकते है घटौती भी हो सकती है। मैंने बोला ना उसके बहुत सारे नियम हैं। यहाँ तो हमें क्या देखना, इतना ही देखना है कि पूर्व भव से जितनी बांध कर आए हैं अभी उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी।
नहीं बन रहा था, तीन समय के एक समय में बनती है,
वन थर्ड में बनती है, तीन समय में नहीं अंतर्मूर्त तक बनती
तीन
है,
समय बाकी रहा नहीं बन रहा है,
तीन समय की बात नहीं अंतर्मूर्त तो होता है,
आयुष्य बंद नहीं हुआ।
हाँ
वन थर्ड में पहले नहीं हुआ बाद में होगा।
हाँ
तीन समय तक हो सकता है कि आयु नहीं, आयु का बंद नहीं हुआ,
आठ बार तक, बार कहो आप समय नहीं कहो, यू वांट टू नो कितने टाइम, ऐसा कहना चाहते हैं, एक बार नहीं हुआ ऐसा ही कहते हैं, कहना चाहते हैं ना आप
कितनी बार,
कितनी बार,
100 इयर्स का है
100,
66 ईयर,
आप 81 इयर्स का पकड़ो, 81 का पकड़ो तो हिसाब बनेगा,
81 का
तो 54 साल बीत गए,
वो 54 में नहीं बंधा।
हाँ तो चौपन
के बाकी 27 में
27 में वन थर्ड मेरा
ऐसे ऐसे करते हुए।
हाँ
तीन समय जब रहता है,
हाँ
एक समय में बनता है,
नहीं नहीं होता ऐसा, एक समय का नहीं होता कभी, अंतर्मूर्त पहले बनता ही है,
अंतर्मूर्त
एक अंतर्मूर्त
असंख्यात,
हाँ तो अंतर्मूर्त में तो असंख्यात समय होते हैं, देखो 81 ईयर्स का हिसाब लगाते हैं, 81 ईयर्स में 54 साल बीत गए और 27 बाकी रहे, तब पहला अवसर आया, पहली बार ऐसे हो सकता है कि वहां आयु बंधे, बंधेगी ही ये बात निश्चित नहीं है, नहीं बंधी है तो क्या होगा, फिर 27 इयर्स में से 9 बाकी रहे, 18 बीत गए, तो जब 81 में 9 इयर्स बाकी है तब उसका आयु बंधेगा, बंधेगी यानी अंतर्मूर्त तक बंधेगी, तब भी नहीं बंधी, तभी 9 साल बाकी गए उसमें से वन थर्ड यानी 3 साल बाकी रहे तब बंधेगी, नहीं बंधेगी तो एक साल बाकी यानी 12 महीने उसमें बंधेगी, 12 महीने में उसमें भी नहीं बंधी तो 4 महीने पहले बंधेगी, तो 120 दिन के उसके अभी 1/3 करो। इस तरह से आठों ही बार नहीं बंधेगी तो भी लास्ट एक अंतर्मुहूर्त पहले तो आयु बंद ही जाती है। बिना आयु बंद के कोई मरेगा ही नहीं।
एक जीव अग्रेव का पूरा आयु एक ही टाइम बनता है कि अलग अलग टाइम पे?
हाँ, आपका प्रश्न है आगे की आयु एक ही टाइम में बनती है, एक ही अवसर में कि अलग अलग में? हो सकता है कोई जीव आठों ही बार मिलकर आयु बांधे, कोई 7 बार में बांधे, कोई 6 बार में, कोई एक ही बार बांधे। एक ही बार बांधने वालों की संख्या ज्यादा है, उसका भी टेबल है पूरा, हुआ आपके पास आ गया ना समय ज्ञान चंद्रिका। हाँ, उसमें है ये सब डिटेल है उसके अंदर।
राजा प्रसन्न चंद्र का उदाहरण अगर आप बताएं तो जो भाव बदले हैं
एक बार
अंतिम समय में उनके जो
भाव
जो सातवें नरक में जाते जाते वापस।
हाँ देखिए देखिए, आपका प्रश्न ऐसा है श्रेणिक राजा के जो भाव बदले हैं अंतिम समय में नहीं बदले
राजा प्रश्न। हाँ,
क्योंकि अंतिम समय में तो किसके आपने किसके कहा
राजा प्रसन्न चंद्र?
कौन
प्रसन्न
चंद्र? जब राज्य छोड़ के वो दीक्षार्थी हो गए तो उनका बेटे को राज्य दिया और उनका अंकल ने उनपे चढ़ाई की और बाद में जो लोग दर्शन करने को जा रहे थे उसके बाद बातचीत
बीच
में हो रही थी और उसने सुना
मुनि राज की बात। हाँ, ऐसा है ना, उस समय के परिणाम अलग थे और बाद में अलग हो गए जो कोई है तो उसकी बात अलग बात है। ये आयु संबंधी बात चल रही, आयु जो बांधी हुई उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। उस समय के परिणाम कैसे है तो उस गति के योग्य है ऐसा हम कहेंगे? योग्य है। उस समय बंधी है कि नहीं बंधी वो बात नहीं है। यदि बंदी है तो नरकायु बंदी होगी तो वो तो बदल नहीं सकती है, नरकायु तो नरकायु रहेगी। हो सकता है जैसे श्रेणिक राजा के सम जैसे सातवें नरक की 33 सागर की बांधी थी वो चेंज होकर 84,000 वर्ष ड्यूरेशन, नरकायु तो वो रहेगी ही रहेगी। परंतु यहाँ भावों की बात है, परिणाम के तो जीव के परिणाम उलट पुलट कैसे भी हो सकते है। जैसे हम देखते न 11वें गुणस्थान तक का जो जीव है पूर्ण वितराग हुआ है उपशम श्रेणी मांडी है और फिर बाद में 11वें में से 10वां 9वां 8वां 7वां 6वां 7वां मुनिराज चल रहे, हो सकता है भाव ऐसे बिगड़ जाए कि पहले गुणस्थान में आवे और फिर स्वयं में पुरुषार्थ करे फिर 7वें में चले जाएंगे, हो सकता है। ये वहां पर फिट होगा आपके यहाँ 7वें 6ठे गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान से नीचे आ गए, मिथ्यात्व में परिणाम हो गए, कोई लड़ाई उसके भी परिणाम हुए फिर चढ़ गए ऊपर श्रेणी में, यानी 7वें गुणस्थान में जा सकते वहां से। वो बात अलग है, परिणामों की बात अलग है और आयु की बात अलग है। ऐसा कोई जीव है जो आयु ही नहीं बांधता है? सिद्धावस्था में कोई भी बात कर्म नहीं बनती है? आपको कहना क्या है? अरिहंत भी नहीं बांधते जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीव है, वो आयु बांधेगी नहीं क्योंकि जो आयु बांधेगी उसको तो भोगना पड़ेगा ही, उसको तो आगे का भोग लेना ही पड़े, जिसको हम कहते चरम शरीरी है। जैसे महावीर का जीव, जो कोई अभी मोक्ष गए हुए जीव हमें पता है तो उन्होंने अंतिम भव में तो आयु ही नहीं बांधी, जो पहले बंधी थी मनुष्य आयु उसका भोग कर वो कंप्लीट करके वो मोक्ष चले गए। आयु की बात निकलती ना उसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं।
ऐसे ही वन थर्ड का जो है, ऐसे व्हाट डिसाइड्स
दैट? हाँ, आपका प्रश्न है वन थर्ड का क्या, कौन डिसाइड करता है? वस्तु स्वरूप डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। वो क्या होता है, वो क्यों होता है? तो जीव के जो आयु बनती है वो मध्यम परिणामों में बनती है। लेशा के बहुत सारे जो अलग अलग भेद होते हैं उसमें जो कोई मध्यम लेशा के परिणाम होते हैं, मध्यम परिणाम कहूं अभी इतनी बात क्योंकि उसके बहुत टेक्निकल शब्दों में जाएंगे तो और फंस जाएंगे, तो मध्यम परिणाम होते तब आयु बनती है। और वो मध्यम परिणामों भी नरक के योग्य परिणाम, देव के योग्य परिणाम, मनुष्य के योग्य परिणाम, तिर्यंश के योग्य परिणाम अलग अलग होते हैं, तो वैसी वैसी आयु बनती है। तो वो उस समय ही बनती है, उसको कहते हैं वो अपकर्ष काल। आयु बंद के परिणाम कब होते हैं ये निश्चित होता है, तो वो वन थर्ड में हो सकते हैं। उस समय आयु बंधेगी ही, ये इसका कोई निश्चित ही नहीं है, परंतु कब बंध सकती है तो उस समय बन सकती है। तो आप कहेंगे तो हम उस समय कैसे परिणाम रखे, आप ही कहो कैसे कैसे करना, वो मालूम नहीं है, मगर मान ले समझ सकते हम, थोड़ा अंदाजा लगाएंगे, तो आप कैसे परिणाम करेंगे।
सभी टाइम अच्छा ही रहना,
सभी टाइम क्यों,
कभी भी आयु बन सकते,
यानी आप आयु बांधना चाहते हैं।
वो तो है ही नहीं, जब तक मुनि नहीं बने तो मुक्त
नहीं, अपना अभिप्राय नहीं। देखो मूल में परिणाम अपने हाथ की बात नहीं, एक तो ये भी मालूम है कि हमारी आयु कितनी वो भी मालूम नहीं है, और वहां तो समयों का हिसाब चलेगा, खाली 81 वर्ष की इतनी नहीं बात चलेगी, तो वो हमने गर्भ में कब आए उस समय से बात करनी होगी, वहां से 81 वर्ष गिनना है, तो कोई सात महीने के बाद जन्मा, कोई 9 महीने के बाद जन्मा है, हम तो वो हॉस्पिटल वाला वहां से गिनेंगे हम कितने हुए, और भी समयों की और अंतर्मुहूर्त की बात कहां हमारे ज्ञान की बात है, तो हमें पता भी नहीं कब आयु बंधेगी। तो आप कहेंगे सदैव अच्छे परिणाम रखो, है ना, परंतु ये परिणाम रखना नहीं रखना ये अपने हाथ की बात ही नहीं है, यथा योग्य परिणाम उस समय हो ही जाते हैं, हम चाहते ऐसी बात नहीं है, चाहने से परिणाम बदले नहीं जा सकते, यही मूल बात है। हम जैसे शरीर से भिन्नता अभी देख रहे हैं ना, तो उसके ये तो शरीर से भिन्न हूं, ये तो बात सभी धर्म के लोग कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कुछ नहीं होती है, वो तो अमर है, इस देह से दूसरा देह धारण करेगी, परंतु राग से जो भिन्नता होती है वो महावीर की वाणी में विशेषता आई है, कौन सी, विभाव परिणाम ये जीव का स्वभाव नहीं है, उससे जीव भिन्न है, ये कब निश्चित करना है, विभाव के काल में ही अभी हम निश्चित करेंगे। हमारे में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो है हमारे की पर्याय में, हम अपने अपराध से कर रहे हैं, पर वो हमारा कायमी स्वभाव नहीं है, जैसे अभी बात की ना पानी को तो शीतल कहा हमने सबने, अरे पन तो गर्म होता हुआ दिखाई देता है ना, हाँ मगर वो कायमी स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव क्या है तो शीतलता है, वैसे राग द्वेष हो रहे हैं, होने दो, परंतु वो जीव का कायमी स्वभाव नहीं है, जो कायमी स्वभाव है वो रह जाता है, वो विवाह तो चले जाते हैं,
गर्म पानी है,
हाँ गर्म पानी है, तो सिद्ध हमें कायमी स्वभाव देखना है, हम अरिहंत सिद्धों को क्यों नमस्कार करते हैं, सिद्धों का नाम स्मरण क्यों करते हैं, हमको नाम लेने से कुछ नहीं होता है, उनका स्वरूप निश्चित करेंगे तो वो हमारा कायमी स्वभाव हमको ख्याल में आता है, वो हमें सिद्धों की तरफ देखने से आता है, इसलिए हम सिद्धों को स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, अरिहंतों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो कायमी स्वभाव कैसा है ये उनकी पर्याय की तरफ देखकर हमें पता चलता है, और मेरा कायमी स्वभाव ऐसा है जब समझ लेते हैं और स्वभाव की दृष्टि करते हैं तो पर्याय में स्वभाव प्रकट हो जाता है, ये इतना सरल है प्रोसेस, अपना कायमी स्वभाव कैसा है उसमें मैंपना स्थापित करना है। हम अपना मैंपना किसमें स्थापित किया, पहले शरीर में, मैं काला गोरा हूँ, जाड़ा हुआ, अभी बारीक होना है, थोड़ा कम डाइट करेंगे तो हो जाएंगे, तो पर मैं स्वपना स्थापित किया, अब शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं वो दया वाला हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, किसमें धार्मिक, यानी पुण्य परिणाम करने वाला, तो उसमें अटक गए, तो वो तो विभाव है, पुण्य हो या पाप हो दोनों विभाव है, क्यों, सिद्ध भगवान कितना पुण्य करते हैं, अरे पुण्य तो कर्म है ना, तो पुण्य करते रहेंगे तो कर्म बांधते रहेंगे, तो कर्म बांधते रहेंगे तो छूटेंगे कब, तो सिद्ध भगवान तो पुण्य नहीं करते, अरिहंत भगवान तो पुण्य करते हुए शुभ भाव करते हैं कि नहीं करते, अरिहंत भगवान हम जिन्हें नमस्कार करते उनका स्वरूप तो पहले नक्की करना पड़ेगा, बोलो बेन अरिहंत भगवान कोई शुभ भाव करते हैं कि नहीं करते, परचे तो हमारे से भी पर है, फिर भी हमारे पुण्य होता रहता है, मुनियों से भी पुण्य भाव तो शुभ अशुभ पर है, फिर भी मुनियों को होता है ना, मुनि भी भगवान की पूजा अर्चना, ये पूजन है ना, नामस्मरण वगैरह करते हैं, और वो भी यात्रा आदि करते हैं, उपदेश आदि करते हैं, तो दया का भाव भी है उनके, उनके भी शुभ भाव है, पर है जाना है। ऐसे अरिहंतों के शुभ भाव होता है कि नहीं होता?
वो वितरागी है।
हाँ, वो पूर्ण वितरागी है, ना पुण्य ना पाप है। पाप तो पहले ही चला गया, पुण्य भी नहीं है। पुण्य ने शुभ भाव भी मुनि अवस्था तक है, अरिहंत अवस्था को नहीं। ये किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था, अरिहंत भगवान महावीर भगवान ऐसे बैठे मंदिर में तो वो क्या करते, सिद्धों का नाम लेते हैं क्या, क्या करते हैं? तो हमें ऐसा लगता है वो क्या सोचते होंगे, वो क्या करते होंगे, उनको कुछ शुभ राग है कि नहीं है? उनके कोई शुभ राग नहीं है, वो पूर्ण वीतरागी हुए। ये सभी बातों का हमें यहाँ बैठे बैठे निर्णय करना है, और निर्णय से ही धर्म की शुरुआत होने वाली है। धर्म यानी वीतरागता, आत्मा का अनुभव, उसकी स्टार्टिंग, उसकी शुरुआत कैसे होगी? निर्णय से होगी। हम पहले में पहले क्या करना चाहते हैं, बोलो, हम धर्म के नाम पर क्या करना चाहते हैं? कि ये साधना करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, यानी कुछ शुभ भाव करना चाहते हैं, उससे धर्म होगा ऐसा मानते हैं। अब धर्म यानी वीतरागता, पहले में पहले हमको सीखना है परिभाषा। धर्म इज इक्वल टू वीतरागता, और शुभ राग या अशुभ राग ये क्या है? राग है। तो राग करने से वीतरागता होगी कि नहीं होगी, ये पहले निश्चित करना है। राग हो गए, मुनिराजों को भी राग है, भी समझाने का राग है, ग्रंथ लिखने का राग है, राग से मुक्त नहीं हुए हैं, परंतु वहां वीतरागता जो है वो राग के कारण नहीं उत्पन्न हुई। वो स्वरूप जो है ना, वीतराग स्वरूप, उसका लक्ष्य करने से वहां वीतरागता उत्पन्न हुई, और वहां वीतरागता भी है और राग भी है, दोनों एक साथ चलते हैं, परंतु राग के कारण वीतरागता नहीं है, दोनों एक साथ है। मुनिराजों को आंशिक वीतरागता भी है और साथ में राग भी चल रहा है। ये चारित्र गुण में दोनों धारा एक साथ चलती है। जैसे एक ग्लास है, हमने पानी से भरा है, फुल भरा है, तो पानी की जगह राग समझना, तो परिपूर्ण राग है ना, मिथ्या दशा, मिथ्यात्व दशा में तो पूरा राग द्वेष चल रहे है उसके, मोह राग द्वेष। अब वो पानी कम हुआ थोड़ा, उसमें से 1/4 खाली है और 3/4 भरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ग्लास खाली है कि पूरा कि भरा हुआ है? दोनों चल रहे ना, 3/4 भरा है, 1/4 खाली है, फिर और आधा किया तो आधा भरा है आधा खाली है, और कम किया तो 1/4 भरा है 3/4 खाली है। वैसे यहां राग के साथ कंपैरिजन करना, मिथ्यात्व दशा में परिपूर्ण राग द्वेष वाला है, अभी वो राग की क्वालिटी अलग अलग बदलेगी, कभी मंद राग होगा, कभी तीव्र राग होगा, कभी क्रोध मान माया लोभ, इसमें से कुछ कुछ परिवर्तन होगा, परंतु राग तो चलेगा। जब आत्मा का अनुभव होता है, अनंतानुबंधी चले जाते हैं, तो वीतरागता चालू हो गई, तो राग भी है और वीतरागता भी। अभी राग ज्यादा है परंतु वीतरागता की शुरुआत हो गई, अभी राग घटेगा वीतरागता बढ़ेगी, तो राग घटते घटते वीतराग बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था हो जाएगी, राग पूर्ण अभाव हो गया, वीतराग हुआ और ये वीतरागता परिपूर्ण हो गई, परंतु राग के कारण वो वीतरागता नहीं, वो खालीपना के कारण या भरे हुए के कारण वो खालीपना नहीं है, दोनों एक साथ है तो सही, परंतु राग करने से वीतरागता नहीं हुई है, क्योंकि दोनों की दिशा उल्टी है ना, राग की दशा दिशा जो है पर की तरफ है, और वीतरागता स्व की तरफ होने से होती है, और राग पर की तरफ देखने से होता है। स्व की तरफ देखने से राग की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इस वजह से
वीतरागता बढ़ने से राग की,
हाँ वीतरागता बढ़ती जाती है तो राग उत्पन्न ही नहीं होता। जो ऑलरेडी है उसको क्या करना, अभी वो तो एक समय में नष्ट ही होने वाला है, तो जहां अपनी दृष्टि करने से वीतरागता बढ़ती है तो उस पर्याय में राग घटा हुआ ही पैदा होता है, उसको कहते हो राग घट जाता है। अभी हमने आयु कर्म की बात देखी है, इसमें इतना ही समझना कि जो अभी हम वर्तमान में आयु है उसमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो इंडिया के सारे लोग यहां आते हैं ना फॉरेन में, अमेरिका में ट्रीटमेंट कराने, लगता है आयु थोड़ी बढ़ जाएगी, उतनी आयु हो तो वैसा निमित्त भी मिल जाएगा, और आयु उतनी है तो वो तो बैठे बैठे भी बिना कोई बीमारी के भी वहां लुढ़क जाएगा। तो ये हमें बिल्कुल निराकुलता होती है कि जितनी आयु है उसमें तो कोई कम करने वाला नहीं है, परंतु ये भी निराकुलता है कि उस आयु में कोई बढ़ोतरी भी नहीं होने वाली है। और ये आयु मेरी आयु है ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम क्या है? जीव है। जीव का अर्थ क्या होता है? जीव द्रव्य बदलकर तो कभी पुद्गल नहीं होने वाला है, तो जीव तो अनादि अनंत जीव ही रहेगा। उसका नाम ही जीव इसलिए कि जीता आया है, जी रहा है और अनंत काल तक जीता रहेगा। तो जीने का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन, यही उसका लक्षण है। तो उसमें से ज्ञान दर्शन कभी खूटने वाला नहीं है। अभी मनुष्य है, मरकर देव हो गया, देव मरकर कभी फिर मनुष्य हुआ, कभी तिर्यंच हुआ, कभी नारकी हुआ, उसका जो जीवपना है, जो ज्ञान दर्शन, वो तो चलता ही रहा। हम आयु खलास हो गए कहेंगे, हम मनुष्य आयु पूर्ण हुई, अभी देवायु चल गए, परंतु जीव का तो जीव ही रहा ना। अभी उसको मनुष्य कहते थे, अब देव कहेंगे। जीव कहां मरा? कौन मरा? शरीर मरा कि जीव मरा?
शरीर
मर गया
नहीं,
वो जिंदा कब था तभी मरा।
अलग शरीर का जीव से वियोग हुआ, उसको अपन मरण।
अपन मरण क्यों कहते हैं? वो तो उपचार है। जीव और शरीर का संयोग हुआ था और उस विशिष्ट शरीर का वियोग हुआ है, उसने दूसरा शरीर धारण किया, तो हम उसको मरण कह देते हैं। जो हम कहने की बात है वो जन्म भी कहते हैं, मरण भी कहते हैं। हम तो जन्म तो हॉस्पिटल वाले जन्म को कहते हैं। शास्त्र में भी जन्म जब कहते हैं तो अन्य पर्याय से आकर इस पर्याय संबंधी उसने शरीर ग्रहण किया, वो पहले समय से उसको जन्म कहेंगे और वो मरण का समय, तो उसको जन्म और मरण कह देते हैं। शास्त्र में भी कहेंगे कि भगवान का वो जन्म मरण का अभाव हो गया, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? परंतु वो तो कहेंगे तो ये तो संयोग की अपेक्षा से, शरीर का संयोग होना वो जन्म, और उस शरीर से छूटकर अन्य शरीर में गया तो उसको मरण कहेंगे। अब जो केवल ज्ञानी है, उस मनुष्य शरीर है, उसको छोड़कर वो तो निर्वाण हो जाता है, उनको निर्वाण कहते, उनको मरण भी नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने दूसरा शरीर ग्रहण नहीं किया। वो कायम के लिए प्योर जीव फॉर्म में रह जाएंगे। हमें तो इससे अपना स्वरूप निश्चित करना है। यहां भी कर्म की बात समझते हैं, तो कर्म में और मेरे में कोई वो संबंध नहीं है। जो कुछ है आयु वगैरह की बात कर रहे हैं, निमित्त ऐसा बन जाता है, उसको हम कहते हैं ये जी रहा है, ये मर गया, ऐसा जो कहते हैं, परंतु उसमें हम तो जीव है और कायम जीव ही रहते हैं। इतनी यदि बात हम निश्चित करते हैं तो कितना आनंद और निराकुलता हो जाएगी। ये कोई भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, कर्म की थियोरी हो या द्रव्यानुयोग हो, हमें तो अपना स्वरूप समझने से निश्चिंतता हो जाती है, निराकुलता हो जाती है। उसको अभी हम पहले देखेंगे। अब यहाँ कर्म के नाम देख रहे थे, अभी तक हमने आयु कर्म तक देखा है। अब नाम कर्म, नाम का जो कर्म है उसमें शरीर के रचना होती है, शरीर संबंधी, वो गोरा है कि काला है, उसका वर्ण कैसा है, उसका स्पर्श कैसा है, मुलायम है क्या, कठोर है क्या है। यह अकेले अपने शरीर की बात नहीं, ये वनस्पति अभी कोई हरे रंग की है, कोई फूल जो है लाल रंग का है, उसमें भी उस वर्ण नाम कर्म का उदय होता है, वैसे ऐसे उसकी रचना होती है। गंध नाम कर्म है, सुगंध दुर्गंध आदि जो है, या रस नाम कर्म है, वो मिर्ची जो है, वो वनस्पति वो तीखी होती है। अब कोई अन्य वनस्पति, वो गन्ना ले लो, वो तो मीठा रस है उसमें, तो वो भी वो वनस्पति का एक का शरीर है ना, तो उसमें भी ऐसी रचना उसके विशिष्ट नाम कर्म के उदय से होती है। यहां भी कोई दुबला है, कोई मोटा है, हड्डी भी कैसे कमजोर है, किसी की ज्यादा मजबूत है, ये सारे ही नाम कर्म के अलग अलग भेद होते हैं। तो उसको शास्त्र में भी उपमा दी है, जैसे चित्रकार है वो चित्र बनाता है, वैसे नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है। गोत्र कर्म के उदय में नीच गोत्र या उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो हमने आठ कर्म देखे हैं, ये उसकी मूल प्रकृति कहलाती है, और इसके जो पेटा भेद है उसको कहते हैं उत्तर प्रकृति। ये नाम क्यों सीखना? क्योंकि अपना तो यहाँ विषय पंचलब्धि का चलेगा, तो ये कर्मों के नाम क्यों सीखना है? तो देखो जब जीव तत्व निर्णय करने लगता है, आत्मानुभूति होती है, तो इनमें कितने ही कर्म बंधना रुक जाता है, और जो बंधे हुए उसमें भी बहुत सारे उलट पुलट होती है। तो जब वो बात आएगी तो ये समझने के लिए इन कर्मों के नाम पहले पता हो तो वो बात आसान हो जाती है। अब आगे भी हम इसके और आगे चर्चा करेंगे, अब यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।